Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। सबसे पहले हम इसराइल के बारे में 10 अफवाहें नामक किताब पर जैसे ही नज़र डालते हैं तो सबसे पहला जुमला जो हमारा ध्यान खींचता है वो है, ऐसी चीज़ें कि जिनके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं सही हैं लेकिन हैं नहीं। दोस्तों, इसराइल के बारे में 10 मिथक पॉडकास्ट का ये पहला एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास। फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन हमने इस किताब को इसलिए चुना क्योंकि राइटर एक यहूदी और इसराइली है। इलन पेपे इस किताब के राइटर हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इतिहासकार के रूप में मशहूर हैं। ख़ास तौर पर फिलिस्तीन के इतिहास पर उनकी अच्छी पकड़ है और इससे भी बढ़कर ये कि वो एक शोधकर्ता की नज़र से ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हैं। इसी वजह से धर्म और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर उनकी किताबें पढ़ने योग्य हैं। ये किताब पेपे की प्रकाशित होने वाली सबसे आखिरी किताब है। उन्होंने शोध और आलोचनात्मक दृष्टि से इसे लिखा है। वो किताब के प्रीफेस में लिखते हैं कि जो भी हो, वो एक इसराइली हैं, वो ज़ायोनी शासन की आलोचना करते हैं, लेकिन एक यहूदी और ज़ायोनी होने के रूप में ज़ायोनी शासन को बाकी रखना चाहते हैं। इसीलिए उनकी किताब में कहीं भी ज़ायोनी शासन को भंग करने और फिलिस्तीनियों की घर वापसी की बात दिखाई नहीं देगी। वो फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी जताते हुए नजर आते हैं और इसराइल के अपराधों की प्रमाणिक रूप से आलोचना करते हैं। इसके समाधान के लिए वो दो प्रस्ताव भी पेश करते हैं। पहला उन लोगों का प्रस्ताव जिनका मानना है कि इसराइल को सिर्फ 1967 के बाद कब्जा किए गए इलाकों को फिलिस्तीनियों को वापस लौटा देना चाहिए ताकि एक स्वाधीन फिलिस्तीनी राष्ट्र का गठन किया जा सके। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन के अक्सर इलाकों में इसराइल अपना कब्जा बाकी रख सकता है। दूसरे कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि फिलिस्तीनियों और यहूदियों को मिलकर एक देश बनाना चाहिए और उसमें वो यहूदी भी शामिल हों जो ज़ायोनी शासन के गठन के बाद दूसरे देशों से पलायन करके फिलिस्तीन पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेश किए जाने वाले दो बुनियादी समाधानों में कहीं भी ज़ायोनी शासन की पूर्ण समाप्ति की बात नहीं कही गई है, जिसका गठन अवैध रूप से कुछ पश्चिमी देशों ने मिलकर फिलिस्तीन में किया था। इसी तरह से वो दूसरे देशों से आकर बसने वाले यहूदियों की उनके देशों में वापसी की बात भी नहीं करते। इसके बावजूद उनकी बातों का अध्ययन किया जा सकता है। इलन पेपे किताब के पहले भाग में फिलिस्तीन के अतीत के बारे में मशहूर 6 मिथकों की समीक्षा करते हैं और उन्हें प्रमाणित करते हैं। वो अवास्तविक मिथक जिसे पश्चिम के मुख्य धारा के मीडिया और राजनीतिक हलकों ने इसराइल के व्यवहार को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरे भाग में इसराइल के वर्तमान के बारे में 2 मिथकों की पड़ताल की जाती है और अंतिम अध्यायों में भविष्य पर नजर डाली जाती है और निष्कर्ष निकाला जाता है। पहला मिथक, फिलिस्तीन एक खाली इलाका था, वहां घास फूस के अलावा कुछ नहीं था और चारों तरफ सिर्फ खाक उड़ती रहती थी। ये मिथक पहला दस्तावेज था जिसके बहाने ज़ायोनियों ने फिलिस्तीन की भूमि पर कदम रखा, एक खाली और बंजर इलाका जिसे वो आबाद करना चाहते हैं, एक ऐसी जमीन जो किसी की नहीं है, उस पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। जिस क्षेत्र को आज राजनीतिक रूप से इसराइल कहा जाता है, वो प्राचीन रोमन काल से आधिकारिक तौर पर एक देश रहा है। रोमन साम्राज्य से पहले के युग में भी ये बहुत महत्वपूर्ण देश था, जिसकी चर्चा हम आगे की कड़ियों में करेंगे। लेकिन शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के बीच एक व्यापक सहमति है, और वो ये कि ये रोमन ही थे जिन्होंने इस भूमि को फिलिस्तीन का नाम दिया था, और ये कि नामकरण के रोमन स्रोत अन्य समान स्रोतों से पुराने हैं। सूत्रों का कहना है कि इस भूमि को इसराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीन बताया गया है। रोमन शासन और बाद में पूर्वी रोमन साम्राज्य की अवधि के दौरान फिलिस्तीन अपने मूल लोगों के साथ इस साम्राज्य के प्रांतों में से एक था, और इसकी स्थिति काफी हद तक रोम के भाग्य पर निर्भर थी। इस्लाम के उदय के साथ और सातवीं शताब्दी के मध्य से फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के मूल निवासियों का इतिहास अरब दुनिया और इस्लामिक दुनिया से जुड़ा हुआ था। इस बीच निश्चित रूप से और धर्म युद्ध की अवधि जैसी छोटी अवधि में फिलिस्तीनियों और वहां के मूल लोगों का प्रशासन कुछ समय के लिए ईसाइयों के हाथ में चला गया था। मुस्लिम और ईसाई साम्राज्य और राजवंश फिलिस्तीन को उसकी धार्मिक स्थिति और रणनीतिक स्थिति के कारण अपनी भूमि से जोड़ने के इच्छुक रहते थे। फिलिस्तीन में मुसलमानों का पहला किबला स्थित है, और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। विशेष रूप से मूल निवासियों के इस्लाम स्वीकार करने के कारण इसका इस्लामी इतिहास के लिए विशेष महत्व है। इसके अलावा फिलिस्तीन अपनी भूमि की उर्वरता के कारण लंबे समय से अन्य देशों के लिए आकर्षक रहा है। उनमें से कुछ देशों के सांस्कृतिक चिन्ह अभी भी फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों में देखे जा सकते हैं। वो अवधि जो समकालीन फिलिस्तीन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो फिलिस्तीन पर तुर्कों या उस्मानी शासन का काल है। उस्मानी शासन ने 400 वर्षों तक फिलिस्तीन को अपने शासन के अधीन रखा, और आज भी उनकी विरासत के चिन्ह इस सरजमीन पर हर तरफ देखे जा सकते हैं। जब तुर्क फिलिस्तीन पहुंचे तो उन्हें एक ऐसे इलाके का सामना करना पड़ा जहां रहने वाले ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम, ग्रामीण और अरबी भाषी थे। इसके अलावा एक शहरी कुलीन अल्पसंख्यक वर्ग भी था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय फिलिस्तीन की 5% से भी कम आबादी यहूदी थी, और शायद कुछ प्रतिशत ईसाई थे। उस समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसने वाले यहूदी फिलिस्तीन को तोराह में वर्णित पवित्र भूमि मानते थे। यहूदी धर्म में तीर्थ यात्रा का ईसाई धर्म और इस्लाम जैसा महत्व नहीं था, लेकिन कुछ यहूदियों ने यरूशलेम की तीर्थ यात्रा को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया, और वे छोटे छोटे समूहों में तीर्थ यात्रा के लिए फिलिस्तीन जाने लगे। इस तथ्य के बावजूद शायद आप नहीं जानते होंगे कि उस्मानी शासन के दौरान फिलिस्तीनी इतिहास के 400 वर्षों के बारे में इसराइल के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के परिप्रेक्ष्य में कितनी अजीब कहानी प्रस्तुत की गई है। एक कहानी जो कहती है कि 1800 में फिलिस्तीन एक रेगिस्तान बन गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ किसान जो मूल रूप से वहाँ के नहीं थे, यानी फिलिस्तीनी, सूखी और गर्म भूमि पर खेती कर रहे थे जो उनकी नहीं थी। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने इस भूमि को एक महत्वपूर्ण यहूदी आबादी वाले एक द्वीप के रूप में दर्शाया है जिस पर तुर्कों का शासन था। उस्मानी साम्राज्य अपनी महंगी योजनाओं में फंसा हुआ था, और उसने इस इलाके को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। हर बीते साल के साथ ये भूमि सूखी और बंजर हो रही थी, और कृषि भूमि रेगिस्तान में बदल गई थी। किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर इस तरह की फर्जी तस्वीर का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में अभूतपूर्व है। ये कड़वी विडंबना है कि इस फर्जी कहानी के लेखकों ने स्वयं इसराइल में होने वाले अकादमिक शोध पर भरोसा नहीं किया। बेशक कई इसराइली अकादमिक शोधकर्ताओं ने इस कथा को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। उनके शोध से पता चलता है कि लगातार कई शताब्दियों तक फिलिस्तीन न केवल एक रेगिस्तान नहीं था, बल्कि एक समृद्ध भूमध्य सागरीय अरब इलाका था, एक ऐसा समाज जहां के अधिकांश निवासी मुसलमान और ग्रामीण थे। हालांकि इस देश में शहरी केंद्रों की एक श्रृंखला भी थी। दुष्प्रचार के इस युद्ध के बावजूद किसी भी मामले में ये मनगढ़ंत कहानी के फिलिस्तीनी खाली और बंजर इलाका था अभी भी इसराइली स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई जाती है। मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इसराइल में विश्वविद्यालयों के कुछ शोधकर्ताओं ने इस फर्जी कहानी पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं, लेकिन इसराइली शिक्षा प्रणाली पर उनका प्रभाव अधिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये धारणा अभी भी कायम है कि वादा की गई भूमि यानी फिलिस्तीन ज़ायनियों के वहाँ पहुँचने से पहले एक निर्जन, सूखी और बंजर भूमि थी। यहाँ हम ऐतिहासिक डेटा की जांच करना चाहते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक उस्मानी काल के दौरान फिलिस्तीन अन्य अरब समाजों की तरह एक समाज था। न केवल फिलिस्तीन के लोग घिरे हुए नहीं थे, बल्कि वे विशाल उस्मानी साम्राज्य के एक भाग के रूप में अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क में थे और व्यापार कर रहे थे। दूसरा, फिलिस्तीन परिवर्तन और आधुनिकीकरण के लिए खुला था। इसने ज़ायनी आंदोलन के आगमन से बहुत पहले ही अपना विकास शुरू कर दिया था। यूरोप के साथ उनके व्यापार के कारण बंदरगाहों और शहरों का तटीय नेटवर्क बहुत समृद्ध और विकसित हो गया था, और साथ ही देश के मैदानी इलाकों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों के साथ भी व्यापार जारी था। ज़ायनी और अमेरिकी मीडिया द्वारा प्रस्तुत बंजर और रेगिस्तानी छवि के बिल्कुल विपरीत इस देश को उस समय लेवेंट के सबसे हरे भरे क्षेत्रों में से एक माना जाता था। उस समय फिलिस्तीन में एक समृद्ध और उत्पादक कृषि उद्योग फल फूल रहा था। कुछ और बैतलहम जैसे छोटे और ऐतिहासिक शहर फिलिस्तीन में ज़ायनियों के आगमन से पहले तक लगभग 5 लाख लोगों की आबादी की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। 19वीं सदी के अंत तक ये जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जनसंख्या का केवल एक छोटा सा प्रतिशत यहूदी था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदियों ने ज़ायनी आंदोलन द्वारा प्रचारित विचारों का विरोध किया था। उपनिवेशीकरण और यहूदियों के अपने देशों से फिलिस्तीन प्रवास की शुरुआत से पहले ही फिलिस्तीनियों ने खुद को राष्ट्र की अवधारणा से परिभाषित कर लिया था, एक ऐसी शक्तिशाली अवधारणा जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रचलित थी। राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रचार प्रसार विश्व के अन्य भागों में भी हो रहा था। राष्ट्रवादी विचार आंशिक रूप से अमेरिकी मिशनरियों के माध्यम से मध्य पूर्व में प्रवेश कर चुके थे। इन मिशनरियों ने लोगों का धर्म बदलने और ईसाई धर्म को बढ़ावा देने और लोगों को आपस में बांटने के लिए स्वतंत्र और राष्ट्रीय पहचान से संबंधित नई अवधारणाओं को फैलाया था। फिलिस्तीन के शिक्षित अभिजात वर्ग ने अरब दुनिया के अन्य अभिजात वर्ग के साथ इन विचारों को स्वीकार किया और एक प्रमाणिक राष्ट्रवादी सिद्धांत तैयार किया। इसी राष्ट्रवाद ने उन्हें उस्मानी साम्राज्य के भीतर अरबों के लिए अधिक आंतरिक स्वायत्तता हासिल करने के लिए प्रेरित किया और अंततः इससे स्वतंत्रता प्राप्त की। फिलिस्तीन में राष्ट्रवाद की बहस में फंसे ईसाइयों को मुस्लिम अभिजात वर्ग के बीच उत्साही सहयोगी मिले, और जैसे ही वो प्रथम विश्व युद्ध के अंत के करीब पहुंचे, क्षेत्र में कई मुस्लिम ईसाई समूह तेजी से बने और पूरे फिलिस्तीन में फलने फूलने लगे। मुस्लिम ईसाई समूहों ने ही फिलिस्तीन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। संपूर्ण अरब जगत में यहूदी भी ऐसे गठबंधनों में शामिल हो गए जो विभिन्न धर्मों के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए थे और किसी विशेष धर्म या मजहब से संबंधित नहीं थे। ये घटना फिलिस्तीन में भी घटी थी। बेशक ज़ायनीवाद ने तब तक वहाँ लंबे समय से मौजूद यहूदी समुदाय के पूर्ण आत्मसमर्पण की मांग नहीं की थी। ज़ायनियों के आगमन से पहले कई इतिहासकारों ने फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद के बारे में बात की है। हालांकि उस समय भी फिलिस्तीनियों ने अपने देश को फिलिस्तीन का नाम नहीं दिया था, लेकिन फिलिस्तीन की सांस्कृतिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। उस समय भी इस भूमि से संबंधित एक सामान्य भावना दिखाई देती थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक समाचार पत्र का नाम फिलिस्तीन रखा गया, जो उस इलाके को प्रतिबिंबित करता था जहां के लोग खुद को फिलिस्तीनी कहते थे। मुस्लिम बहुसंख्यक और ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यक फिलिस्तीन में सभी अरबी भाषा बोलते थे, लेकिन अपने खास लहजों में। उनके अपने अपने रीति रिवाज और आदतें थीं। वे दुनिया के नक्शे पर फिलिस्तीन नामक इलाके में रहने वाले लोगों के रूप में जाने जाते थे। बाद में फिलिस्तीनी अभिजात वर्ग ने संयुक्त सीरियाई संघ या यहाँ तक के संयुक्त अरब राज्य के विचार के तहत उस्मानी साम्राज्य से स्वतंत्रता का प्रयास शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनियों ने धीरे धीरे खुद को एक स्वतंत्र अरब राज्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से कई मिलियन यहूदियों के जबरन प्रवास की आड़ में अगर ज़ायोनी फिलिस्तीन में प्रकट नहीं हुए होते तो ये देश भी आज लिबनान, जॉर्डन या सीरिया की तरह ही एक स्वाधीन देश होता और आधुनिकीकरण और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता। फिलिस्तीनियों ने दृढ़तापूर्वक राष्ट्रवाद का समर्थन जारी रखा। 1918 में फिलिस्तीन को उस्मानी युग की तुलना में अधिक एकीकृत माना जाता था। 1923 में लाखों यहूदियों के फिलिस्तीन में जबरन प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनी भूमि की सीमाओं के संबंध में बातचीत शुरू की। जैसे जैसे इस भूमि की सीमाएं अधिक सटीक होती गईं, राष्ट्रवादी आंदोलनों को एक बेहतर परिभाषित भौगोलिक स्थान प्राप्त होता गया, वो भी उस देश के लिए जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इसके बाद से मूल और प्रमाणिक फिलिस्तीनी लोगों को इस देश से पहले की तुलना में अधिक जुड़ाव महसूस होने लगा। ब्रिटिश संधि में जानबूझकर इस बात को उल्लेख नहीं किया गया कि फिलिस्तीन किसका है और किससे संबंधित है, वो फिलिस्तीनियों का है या दूसरे देशों से आकर यहाँ बसाए जाने वाले यहूदी अप्रवासियों का। इस नए प्रशासनिक ढांचे का विरोधाभास और विडंबना का अंतिम बिंदु यह था कि फिलिस्तीन की सीमाओं के पुनर्निर्माण से ज़ायोनी आंदोलन के अनुयायियों को इसराइल की भूमि या ज़ायोनी शासन की स्पष्ट भौगोलिक तस्वीर प्राप्त करने में मदद मिली। ये वही शासन है जिसने फिलिस्तीनियों के समस्त मूल अधिकारों को नकार कर यहाँ के सभी संसाधनों पर सिर्फ यहूदियों के अधिकार का नारा लगाया। हाँ, फिलिस्तीन कोई खाली जमीन का टुकड़ा नहीं था। 19वीं सदी में फिलिस्तीन पूर्वी भूमध्य सागर की समृद्ध और उपजाऊ दुनिया का हिस्सा था और आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद की राह पर अग्रसर था। फिलिस्तीन समृद्धि की प्रतीक्षा करने वाला रेगिस्तान नहीं था। फिलिस्तीन वैचारिक रूप से एक देश था और एक आधुनिक समाज के रूप में 20वीं सदी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ज़ायोनी आंदोलन द्वारा इस देश के उपनिवेशकरण ने इस प्रक्रिया को विफल कर दिया और इसे फिलिस्तीन के सभी मूल निवासियों के लिए नरक में बदल दिया। ये पहले मिथक का उत्तर है। फिलिस्तीन कभी खाली भूमि नहीं रही है। यह एक सवाल उठता है, अगर ज़ायोनियों ने फिलिस्तीन की विकास प्रक्रिया को नहीं रोका होता तो ये भूमि विकास के किस पायदान पर आगे बढ़ती। एक और असत्य मिथक को चुनौती देने के लिए इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में हमारा साथ दीजिए, जिस पर इसराइल की बुनियाद रखी गई थी।